ओम शिव 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 करुणा वरुणालय अखंड ब्रह्मांड नायक श्री परमात्मा की पवित्र विभूति सागर के पावन तट पर अखंड मंडल के अधिपति भगवान शिव महादेवादि देव बाबुलनाथ के श्री सानिध्य में अनंत महापुरुषों की तपस्या से परम पावन इस अध्यात्म विद्यापीठ के सत्संग प्रांगण में हम सब साधक वृंद आद्य जगद्गुरु भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा विरचित धन्याष्टकम के आधार पर ये समझने की और सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि अपना जीवन हम कैसे धन्य करें, अपने आप को हम कैसे कृतकृत्य करें। विगत कुछ दिनों ने हम लोगों ने आचार्य श्री के श्री वचनों के अनुसार ये स्मरण किया परब्रह्म की उपलब्धि ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, परम लक्ष्य है। उस लक्ष्य तक पहुंचाने का एक ही साधन है, वो है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप यह है कि वो हमारे इंद्रियों को, हमारे मानस को, हमारी चेतना को, हमारे जीवन को शांत और सुव्यवस्थित कर दें। उस परम तत्व को उपलब्ध करने का जीवन में जिस साधक ने निश्चय कर लिया है, वो साधक धन्य है, उसका जीवन धन्य है। सबकी ये आंतरिक इच्छा होती है कि मैं धन्य हो जाऊं, मेरा जीवन धन्य हो जाए। फिर भी श्रेय के पथ पर, कल्याण के पथ पर, आनंद के पथ पर व्यक्ति क्यों आगे नहीं बढ़ पाता है, व्यक्ति क्यों उलझा रहता है, उसके बाधाएं क्या है, उसकी समस्याएं क्या है, उसके संकट क्या है, इसका निर्वचन करना और इसको समझाना गुरुजनों ने अपना कर्तव्य समझा, अपना दायित्व समझा। इसलिए द्वितीय श्लोक में उन सारी चीजों का आचार्य वर्णन कर रहे हैं कि साधक के लिए बाधाएं क्या है, समस्याएं क्या है, और उन समस्याओं से उत्तीर्ण होने के लिए साधक को अपनी अध्यात्म यात्रा कहां से शुरू करनी है और कैसे शुरू करनी है। इसका सुंदर निरूपण हम द्वितीय श्लोक के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। आइए एक बार इस श्लोक का उच्चारण करके फिर इसका जो चिंतनीय विषय है उसमें हम लोग प्रवेश करते हैं।
आदौ विजेत्य विषयान् मदमोहराग वेषादिशत्रुगणमाहृतयोगराज्या ज्ञात्वामृतं समनुभूय परात्मविद्या कांता सुखा वन गृहे विचरन्ति धन्या। कांता सुखा वन गृहे विचरन्ति धन्या।
आदौ विजित्य विषयान् मदमोह राग द्वेषादि शत्रुगणम् आहित योग राज्याः धन्याः। ऐसा इस श्लोक का अर्थ लगेगा। कौन लोग धन्य हैं? जिन्होंने विषयों की आसक्ति के ऊपर विजय प्राप्त की। आदौ विषयान् विजित्य, ये साधना का प्रथम स्टेप है। साधना आरंभ करनी है तो कहां से हम शुरू करें? विषयाशक्ति के ऊपर हम विजय प्राप्त करें, अपने जीवन को अनुशासित करें, अपने जीवन में एक डिसिप्लिन लाएं। इसके ऊपर विस्तृत विश्लेषण हम लोगों ने कल किया। सेकेंड स्टेप है मद मोह राग द्वेषादि शत्रुगणम विजित्य। हमारे जो आंतर शत्रु है और केवल एक जन्म के नहीं जन्म जन्मांतरों के शत्रु है और जो अनादिकाल के शत्रु है, ये जो इस जन्म की शत्रुता है ना, ये बड़ी टेम्परेरी है। देयर कैन बी ए नेगोशिएशन, कैन बी ए सेटलमेंट। इस जन्म की शत्रुता और शत्रुओं के साथ हम नेगोशिएट कर सकते हैं, सेटलमेंट कर सकते हैं, उनकी शत्रुता को बदल सकते हैं, उनको मित्र बना सकते हैं। इट इज पॉसिबल, ये तो संभव है। परंतु कुछ ऐसे अनादि काल के शत्रु हमारे अपने दिल पर राज करके बैठे हैं, जो नेगोशिएशन करने के लिए तैयार नहीं, सेटलमेंट करने के लिए तैयार नहीं। और दुर्भाग्य तो ये है, ये शत्रु है ऐसा पता भी नहीं चलने देती। बड़ी पीड़ा है। पता चल जाए कि फलाना आदमी शत्रु है तो हम सावधान रह सकते हैं, और हो शत्रु और यदि भ्रांति हो जाए कि ये तो हमारा बड़ा हितेशी है, तब तो फिर भैया हम तो उसके गले में हाथ डाल करके खड़े रहेंगे और वो जो है पीठ में सुरा घोपता रहेगा। और यहां पर हम यही गलती कर जाते हैं, जीवन के क्षेत्र में अपने शत्रुओं के गले में हाथ डाल के, कंधे पे हाथ डाल के हम जीवन जी रहे हैं। और पग पग पर ठोकर खा रहे हैं। ये जो हमारी मूर्खता है, मूर्खता के बिना और इसके लिए क्या शब्द प्रयोग करें भैया? आत्मेव आत्मनो बंधुर आत्मेव रिपु आत्मा। ये आत्मा शत्रुता है और क्या है? आत्मशत्रुता है। तो इन शत्रुओं के ऊपर जब तक व्यक्ति विजय प्राप्त नहीं करेगा तो साधना के उच्च सोपानों में वो आरोहण करेगा कैसे? ये तो उसकी टांग खींचते रहेंगे, ये उसको टिकने नहीं देंगे, ये उसको आगे बढ़ने नहीं देंगे, ये उसको उस विषय में पुरुषार्थ करने नहीं देंगे। इसलिए जब तक हमारे मन में ये सुदृढ़ संकल्प जन्म नहीं लेगा कि बाहर के शत्रुओं से तुम्हें बाद में निपट लूंगा, देख लूंगा, पहले मेरे जो अंतस की गहराई में पड़े हुए जो शत्रु हैं मेरे अपने हृदय की गहराई में बैठे हुए जो मेरे शत्रु हैं, इन शत्रुओं के साथ मुझे काम करना है, इन शत्रुओं को मुझे अपने दिल की गहराई से निकाल बाहर करना है। और ऐसा जो कर पाए वही साधक है, वही शांति प्राप्त करने का अधिकारी है, वही मुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी है। जब हम अपने व्यक्तिगत जीवन का यदि विश्लेषण करके देखेंगे, परमात्मा की कृपा से, ईश्वर के आशीर्वाद से हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है। बहुसंख्यक साधकों के पास भगवान की कृपा से कमी नहीं है, रहने की जगह है, खाने के लिए पर्याप्त अनाज है, समाज में पर्याप्त सम्मान है, अच्छा जीवन है, परंतु हम भीतर से कहीं से न कहीं से पीड़ित हैं, दुखी हैं, दीन हैं, क्लांत हैं, थके हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर एक गहरा संघर्ष चल रहा है, काम हमें प्रतप्त कर रहा है, क्रोध हमें जला रहा है, लोभ हमें दुखी कर रहा है। तो भैया, जिसके भीतर आग लगी हो, बाहर से हम कितना उसको ढकेंगे? जब तक भीतर की आग को बुझाएंगे नहीं, तो शीतलता पैदा नहीं हो सकती, शांति पैदा नहीं हो सकती, आनंद पैदा नहीं हो सकता, प्रेम पैदा नहीं हो सकता। इसलिए हमारे परिवार टूटते हैं, इसीलिए हमारा समाज टूटता है, इसलिए हमारे रिश्ते टूटते हैं, इसलिए हमारे संबंध टूटते हैं, क्योंकि हमारे भीतर ये जो शत्रु है, इन्होंने खलबली मचा के रखी है। तो साधक का परम कर्तव्य होता है इन शत्रुओं को जीते, और जिसने जीत लिया, आचार्य शंकर बता रहे वो धन्य है। अब साधक के मन में प्रश्न ये हो सकता है, कहा कि एक तो जीवन बहुत छोटा और शत्रु बड़े बलवान, अनादि काल से हम ही लोगों ने इसको खिला पिला करके इनको मजबूत किया, और अब हम ही लोगों को इनसे दोबारा लड़ना है, और ये तो अनादि काल से पोषण पा पा करके मजबूत हो गए हैं, और मैं तो अब छोटे से जीवन में कुछ कर जाऊं संसार में कि अपने इन शत्रुओं से ही लड़ता रह जाऊं। ये साधक के मन में बड़ी एक समस्या आकर के खड़ी होती है, वो बहुत बार कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर जाए तो जाए किधर। संसार अपनी तरफ बुला रहा है, भोग अपनी तरफ बुला रही है, विषय अपनी तरफ बुला रहे हैं, और ये गुरु लोग जो है सिर पे डंडा लेकर के खड़े, बोले ना। तो वो चिंतित हो जाता है कि आखिर किधर जाए, किधर जाए। तो ये जो दो चीज बताई, विषयों की आसक्ति को जीतना और अपने शत्रुओं को शत्रुओं के रूप में पहचानना और उन शत्रुओं से अपने आप को मुक्त करना, अपने हृदय को मुक्त करना, अपने मन को मुक्त करना, अपने जीवन को मुक्त करना क्यों जरूरी है, इसके लिए आप दो इसके जो है दृष्ट फायदे देख सकते हैं। जैसे हमारे भीतर थोड़ा बल आ सकता है कि हां ये करना चाहिए। एक चीज आप थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे तो दिखेगा, मेरे श्रद्धेय गुरुदेव हम साधकों को हमेशा बताते हैं, कहा कि भोग्य सामग्री हम लोगों को बहुत आकर्षित करती है, परंतु थोड़ा सा विश्लेषण करके यदि देखेंगे तो जितनी भी चीजों का हम संग्रह करेंगे वो चीजें किसी न किसी रूप से हमको अपने ऊपर डिपेंड करेगी। आज तक संसार में कोई ऐसा पदार्थ पैदा नहीं हुआ है जिसने आपको डिपेंड न किया हुआ हो और आपको सुख दे दिया हो। और धीरे 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 ये डिपेंडेंसी ऐसी बढ़ जाती है कि आपको लगता है वही जीवन का सर्वस्व है, वो है तो मैं जी सकता हूं, और वो चला गया तो मेरा जीवन ही चला जाएगा। तो धीरे 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 वस्तुएं हमको अपने ऊपर डिपेंड करते 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 पूरा पराधीन बना देती है। और ये जो पराधीनता है ये ऊपर से सूख कर लग सकती है परंतु अंतस में कसोटती रहती है, क्योंकि मानव आत्मा का स्वभाव ये है, पराधीन सपने सुख। तो ये जो हम दूसरों के पराधीन होते हैं, किसी के नौकर होते हैं, किसी के गुलाम होते हैं, वो गुलामी जैसे हमें कसोटती है, ये विषय भी, ये इंद्रियों की आसक्ति भी, ये संसार की प्रत्येक उपलब्धि भी, ये संसार का प्रत्येक पदार्थ भी हमें उतना ही गुलाम बनाती है, हमें उतना ही अधीन बनाती है, हमें उतना ही पराधीन बनाती है। और वो पराधीनता भीतर 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 से हमें कसोटती रहती है। इसलिए इस पराधीनता से यदि मुक्त होना है और हमारे पास कितने भी संसाधन हो, परंतु भगवान ने गीता जी में बताया कृपणा फल हेतवा, आपके दिल में अथवा हमारे दिल में यदि विषयों के प्रति आसक्ति बैठी हुई है और फलाशक्ति यदि गहरे से बैठी हुई है तो हम शांति से जी नहीं सकते। जीवन को एंजॉय कर नहीं सकते, क्योंकि वो कृपणता, वो दीनता फलाशक्ति के रूप में हमारा गला पकड़ करके बैठी है। हम हर पल दीन रहेंगे, अरे मिलेगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं, अरे क्या हो जाएगा पता नहीं। अरे भैया क्या होगा, क्या हो जाएगा, क्या आकाश टूट के गिर जाएगा। प्रारब्ध पहले बना पीसे बना शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। क्या हो जाएगा, हम कभी बहुत गहराई से विचार नहीं करते हैं। जब किसी एक छोटे से पॉइंट पर अड़ जाते हैं तो उसको जीवन की माने जन्म और मृत्यु का प्रश्न बना देते हैं। ये घटना यदि इस ढंग से घटेगी तभी मेरा जीवन है, तभी मेरा सम्मान है, तभी मेरा मान है, ये यदि ऐसे नहीं घटी तो मेरा जीवन निरर्थक है। अरे भैया ऐसी घटनी पहले संसार में कितनी बार घट गई, कौन उनको याद रख रहा है। इतना नाम, इतना सम्मान, इतना यश, इस अनंत काल में इस धराधाम पर कितने लोगों को मिल चुका है, कौन आज उनको नाम ले रहा है, कौन उनकी पूजा कर रहा है, कौन उनकी आराधना कर रहा है। अरे भैया उनकी आराधना की तो बात छोड़िए, हमारे से 10 पीढ़ी हमारे अपने पूर्वजों को हमारा पूर्वजों का नाम हमको याद नहीं है। पिताजी का और दादाजी का नाम बड़े मुश्किल से याद है, उसके पीछे याद नहीं है। तो ये जो उपलब्धियों के माध्यम से हम प्राप्त करना चाहते हैं, अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, अपने आप को अमर करना चाहते हैं, ये हमें कभी भी बहुत ऊंचाई तक नहीं पहुंचा सकती। एक तो भविष्य में इनका कोई भविष्य नहीं है और वर्तमान में पराधीनता हमारे भीतर क्रिएट करती है। कृपणता, दीनता, अरे क्या हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा। तो ये जो हमारे भीतर एक धुक पुक लगी रहती है हमेशा, ये हमें अपने जीवन का आनंद लेने नहीं देती। इससे यदि बाहर निकलना है तो विजित्य विषयान मद मोह राग द्वेषादि शत्रु गण माहृत योग राज्या, इन दो चीजों पर यदि साधक ने काम कर लिया, विषयों की आसक्ति को जीत लिया और द्वेषादि शत्रुओं को यदि पराजित कर लिया तो उसको बाहर राज्य प्राप्त हो अथवा ना हो, बाहर संपत्ति प्राप्त हो अथवा ना हो, बाहर सम्मान प्राप्त हो अथवा ना हो, आहृत योग राज्य, उसको एक नया राज्य मिल गया, उसको एक नया किंगडम मिल गया, उसके लिए एक नया क्षेत्र उपलब्ध हो गया, वो योग राज्य का राजाधिपति बन गया। आहृत योग राज्य। और ये जो योग राज्य है, अच्छा क्या होगा हमारे जीवन में, मान लीजिए हम कल्पना ही यदि कर लें, विषयों की आसक्ति हमारे मन से निकल गई, द्वेषादि शत्रुओं को हमने पराजित किया गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से, अपने प्रारब्ध से, क्योंकि पुरुषार्थ के ऊपर तो बहुत भरोसा किया नहीं जा सकता है, परंतु करना चाहिए साधक को, क्योंकि पुरुषार्थ ही वो संबल है जिसके बल पर वो कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है यदि ऐसा हो जाए तो क्या होगा, कोई सुंदर बगीचा हो और उसके भीतर कोई एक पुष्प विकसित हो गया हो, पुष्प खिल गया हो और उसकी सुगंध से पूरा बागान सुगंधित हो जाता है। इसी प्रकार इस संसार रूप बगीचे में आपका जीवन एक खिले हुए कमल जैसा बन जाएगा, एक खिले हुए सुगंधित पुष्प जैसा बन जाएगा और आपके उस पुष्प की महक से पूरी बगिया महक उठेगी। इतना पवित्र और इतना दिव्य हमारा जीवन हो सकता है। ये जो सिद्ध महापुरुष हो गए, श्रद्धेय प्रेमपुरी जी महाराज हो, वृंदावन वाले स्वामी जी महाराज हो, क्या चीज है उनके व्यक्तित्व में जो आज भी हमें आकर्षित करती है, कौन सी खुशबू है उनके जीवन में जिनका आनंद हम आज भी ले रहे हैं, यही दो खुशबू है, विषयों की आसक्ति को सर्वथा विजय कर लिया और शत्रु जो है द्वेष आदि को उन्होंने जीत लिया, उनका जीवन इतना बड़ा पुष्प बन गया, इतना सुगंधित पुष्प बन गया, जो उनके सामने वर्तमान थे उन लोगों ने तो आनंद लिया ही लिया, आज भी हमें उनके जीवन की खुशबू। आचार्य शंकर कितने पहले हो गए, 1200 साल हो गए, उनके जीवन की खुशबू आज तक हमको मिल रही है, उनके अमृत बिंदुओं से आज भी हम अब जीवन के लिए प्रकाश खोज पा रहे हैं। किस कारण से हम उनके धन को आज नहीं गिनते कि आचार्य शंकर के पास कितनी संपत्ति थी, आज स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज की गणना इस आधार से नहीं किया जा रहा है कि उनके पास बैंक बैलेंस कितना था। ये जो श्रद्धेय महाजन हम लोगों के हृदय में जिंदा है, पीढ़ी दर पीढ़ी तक इनकी प्रकाश, इनकी सुगंध, इनका संदेश पहुंचता रहेगा, उनके पीछे बंधुओं ये केवल दो ही कारण थे, विषयों की आसक्ति नहीं थी और उनके जो घर के शत्रु है वो मर चुके थे। ऐसा पवित्र यदि जीवन बनाना है, ऐसा पावन यदि जीवन बनाना है तो हमारे लिए भी संभव है, हम कर सकते हैं और यही करने के लिए तो हम पैदा हुए हैं। दो स्टेप पर हमको काम करना है, अपने विषयों की आसक्ति को हटाना है, निर्मूल करना है और अपने शत्रुओं को पराभूत करना है। इतना यदि कर लिया इसके बाद क्या होगा, ज्ञात्वा अमृतम, ये हमारा जो अमृत स्वरूप है, अज और अविनाशी स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप है, इसके प्रकटन में ये दो ही बाधा है, विषयों की आसक्ति और कामादि का प्रकोप। इन दोनों के ऊपर साधक ने काम कर दिया तो साधक का अपना जो निज स्वरूप है, ज्ञात्वा अमृतम, और पहले तो शास्त्र से ज्ञात्वा सुन करके और फिर समनुभूय सम्यक प्रकार से अनुभव करके किसको? परात्म विद्या को, अमृत बना देने वाले तत्व को, अमृत बनाने वाली विद्या को। और विद्या कांता शुका वन गृहे विचरन्ति धन्या। विद्या, ये परात्म विद्या ही जिसके जीवन की सहचारिणी बन गई, जिनके जीवन की कांता बन गई, जिनके जीवन की प्रिय गामिनी बन गई, ऐसे साधक वन गृहे, वन को ही, एकांत को ही अपना घर बना करके विचरन्ति धन्याः, धन्य बन करके उसमें विचरण करते हैं। हमारी भी इनरमोस्ट डिमांड यही है। ऐसा आनंद हो, ऐसी शांति हो, ऐसी तृप्ति हो, उसका कभी अंत न हो, कभी अवसान न हो, कभी सीमा न आए। परंतु हमारी समस्या ये है, हमारा दुर्भाग्य ये है, हम उसको संसार के किसी पदार्थ के माध्यम से प्राप्त कर लेना चाहते हैं। बहुधा हम धन के माध्यम से प्राप्त कर लेना चाहते हैं, बहुधा हम पद के माध्यम से प्राप्त कर लेना चाहते हैं, बहुधा हम जनों के माध्यम से प्राप्त कर लेना चाहते हैं। हर दरवाजे पर, हर कदम पर हमें असफलता मिलती है, परंतु फिर भी हमारी बुद्धि के ताले खुलते नहीं है। हम फिर एक बार सफल होकर के दोबारा उसी दिशा में प्रयास प्रारंभ कर देते। और जो असली काम, जो असली धन है, जिसका यदि आविष्कार हो जाए तो हमारे जन्म जन्मांतरों की दरिद्रता मिट जाए। उसे उपलब्ध करने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए हमारे मन में संकल्प भी नहीं होता, संकल्प भी नहीं उठता मजबूती से। एक मजबूत संकल्प का यदि जन्म हो जाए तो साधक का आधा काम हो जाता है। वो संकल्प ही उसे शांति से बैठने नहीं देगा, दूसरी तरफ जाने नहीं देगा, वो संकल्प ही उसकी स्टेयरिंग बनेगा। और जिस गाड़ी में स्टेयरिंग नहीं हो और एक्सलेटर हो और ब्रेक ऊपर से नहीं हो तो क्या होगा? संकल्प होना चाहिए। और ये जो आत्म तत्व की उपलब्धि है, इसकी इतनी महनीयता है, संसार की सारी उपलब्धियां फीकी पड़ जाती है। और हम जो अपने आप को भर देना चाहते हैं, आनंद से परिपूर्ण हो जाऊं मैं, वो भर सकती है। मैंने संतों के श्रीमुख से सुना है, सनातन गोस्वामी जी के जीवन काल की यह घटना है। कृष्ण के परम भक्त थे, वृंदावन में यमुना के तट पर निवास करके कृष्ण भक्ति का, ब्रजधाम वास का आनंद लेते थे। उसी काल में किसी एक ब्रजवासी ने शिव की आराधना की, शंकर की आराधना की, श्रद्धा से भक्ति से भगवान आशुतोष की जब आराधना की तो भगवान प्रसन्न हो गए। अर्थार्थी भक्त था शिव। जब प्रसन्न हुए, बोल तुम्हें क्या चाहिए? कहा कि भगवान, बड़ी दरिद्रता है, जीवन में बड़ा कष्ट है, इस दरिद्रता के कारण, इस कष्ट के कारण, इस पीड़ा के कारण मैं आपका चिंतन, भजन, ध्यान कर नहीं पाता, क्योंकि कंधे पर इतनी जिम्मेदारियां हैं, उसको निभाते निभाते मेरे पास समय ही नहीं बचता कि मैं आपका चिंतन और भजन कर पाऊं। आप कुछ ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि परिवार आराम से चले, संसार आराम से चले, तो फिर मैं आपका भजन करूंगा। मैं अर्थार्थी हूं, मुझे कुछ दे दीजिए। हमारी भी प्लानिंग कुछ ऐसी ही होती है, सब ठीक ठाक हो जाए, सब व्यवस्थित हो जाए और जीवन में जो जो कुछ चाहिए पहले उसका संग्रह कर दूं, सब व्यवस्थित हो जाए तो फिर भजन। प्राय आरंभ में साधकों की इसी प्रकार की दृष्टि होती है। शिवजी ने कहा कि अच्छा, सनातन गोस्वामी यमुना के तट पर तपस्या कर रहे हैं, उनके पास मैंने एक पदार्थ दे करके रखा है, तुम जाकर के वो मांग करके ले आओ, उससे तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। बड़ा खुश हुआ, पता नहीं शिवजी ने क्या दे करके रखा होगा सनातन गोस्वामी जी के पास। मन में प्रश्न भी उठने लगा, वो देंगे कि नहीं देंगे पता नहीं, जब कोई ऐसी चीज है जो उनको भगवान ने दे के रखे तो हमें क्यों देंगे। सुबह उठ करके अनेक प्रश्न अपने मन में लेकर के संकल्प विकल्प करते, क्योंकि कोई ना कृपणा फल हेतु होगा कि नहीं होगा, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, देंगे कि नहीं देंगे, क्या होगा कैसे होगा, वो आप वो करते 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 सुबह सनातन गोस्वामी की कुटिया पर पहुंच गया। गोस्वामी जी अपनी कुटिया बंद करके बैठे थे भजन में, दरवाजा बंद था, दरवाजे के ऊपर खड़ा हो गया। अब उसके मन में वही विकल्प चल रहा है, क्या होगा पता नहीं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देंगे कि नहीं देंगे, क्या देंगे, उससे मेरी समस्या का समाधान होगा कि नहीं होगा। ब्रह्म मुहूर्त हुआ, 4 बजे यमुना स्नान के लिए सनातन गोस्वामी जी ने अपनी कुटिया का दरवाजा खोला, जैसे ही बाहर निकले तो साष्टांग प्रणाम किया, कहा कि अरे भक्त, आज इतने सुबह सुबह इतने जल्दी जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में। बोले बाबा जी बैठी बैठी, स्वामी जी बैठी, थोड़ा सा आपसे काम है, शिवजी ने हमको भेजा है। सनातन गोस्वामी का सुबह सुबह शिवजी ने आपको भेजा है? तो उन्होंने पूरे रात की अपनी घटना बताई, ऐसा ऐसा हुआ, स्वप्न आदेश हुआ, शिवजी ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिया और ये बात बताई कि सनातन गोस्वामी के पास ऐसी कुछ वस्तु है जिससे तुम्हारी समस्या का समाधान हो सकता है, वो शिवजी ने आपको दे करके रखी है। सनातन गोस्वामी ने देखा कि भैया मेरे पास तो कुछ नहीं, भिक्षा मांग के खाता हूं, एक तुलसी की माला है, एक वो हाथ में डालने की जपने की माला, जपने की थैली है, बाकी तो कपड़ा है, इसमें से तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे इनका समाधान हो जाए। शिवजी ने तो मुझे और तो भैया कुछ नहीं दे करके रखा है। तो पहले उन्होंने विचार किया कि भगवान ने जो नाम दे करके रखा है उससे शायद इसका, परंतु देखा कि ये तो जिज्ञासु तो है नहीं, अर्थार्थी है, कब तक उसको याद है। बोले अरे 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 हाँ 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 हाँ, याद आया याद आया याद आया। बोले क्या याद आया? बोले देखो, वो कुटिया के झोपड़ी के ऊपर वहां ऐसे घुसा करके कुछ चीज रखा हो, कपड़े में बांध करके, वो निकाल करके लाओ। वो निकाल करके लाए, कहा कि एक बार एक दिन सुबह सुबह जब मैं यमुना जी स्नान करने जा रहा था तो एक चमकीला पत्थर पड़ा था, चमक रहा था, मैंने जिज्ञासा बस उसको उठा लिया, कुटिया में ले आया तो ला करके देखा कि लोहे को जब स्पर्श किया तो सोना हो गया। तो मुझे लगा कि पार्श्वमणि है ये तो, परंतु पार्श्वमणि है तो क्या करूं मैं, मेरे को तो जरूरत नहीं। तो पहले तो एक बार इच्छा हुई कि जाके दोबारा फेंक दूं, फिर सोचा कि जब कुटिया में आ गई तो पड़ी रहने दो, कभी कोई अधिकारी आएगा किसी को जरूरत होगी तो ले जाएगा, ये बहुत सालों से यह पड़ी थी, मैं तो भूल ही गया था, अच्छा हुआ भगवान ने तुमको भेजा, ही ले जा। साधक देख करके हतभंब हो गया, ये महात्मा का माता खराब है? पारसमणि कब उसको मिला होगा, क्या न क्या नहीं कर सकता था ये, इससे ये बंदा ले जा करके ऊपर कुटिया में टांग करके रख दिया। बोले महाराज आप मेरे, बोले ले जा ले जा ले जा ले जा भैया ले जा। बड़ा खुश हुआ, पारसमणि मिल गई। अब वो जब लेकर के रवाना जाने लगा तो अब उसके मन में फिर दोबारा प्रश्न उठने लगे, मैं तो बड़ा गरीब आदमी हूं, बड़ा बलवान आदमी, इसको रख, मैंने बड़ा दीनहीन आदमी, इसको रखूंगा कहां, कोई भी चोरी कर देगा, कोई बलवान आ गया तो मेरे को तो डांट करके ले जाएगा, राजा को पता चल गया तो मेरे को तो पकड़ करके ले जाएगा, जेल में भी डाल देगा। अरे अब इसको क्या करूं, मैं रखूं कहां, इसको रखूं कैसे, हजारों प्रकार की चिंताओं से, हजारों प्रकार की वेदनाओं से वो पीड़ित हो गया। उसने विचार किया कि अब जाकर के महात्मा को ही पूछना चाहिए कि भगवान इसकी रक्षा करने का उपाय आप कीजिए, आपने दिया है, अब आप ही कुछ ऐसा उपाय करिए कि पारसमणि मेरे पास हमेशा बनी रहे, इसकी रक्षा आप करें। फिर वो चिंतन करते 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 सनातन गोस्वामी की कुटिया की तरफ वापस आया तो इतनी देर संत का चिंतन करते करते उसके मन में अचानक एक विचार आया, अरे कि इतने साल से ये पारसमणि इनके पास में पड़ी है, ये इनका उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास इस पारसमणि से भी जरूर कोई कीमती चीज है। जिसके सामने ये पारसमणि नगण्य है, तुच्छ है, उसको देखा भी नहीं, ये व्यक्ति भूल भी गया कि इसके पास ऐसी कोई वस्तु है, ऐसा तभी संभव है जब इससे कोई बहुमूल्य वस्तु उनके पास हो, और बहुमूल्य यदि वस्तु है तो मुझे यही लेना है, ये रखना ही नहीं है, ऐसा संकल्प करके उन्होंने ले जाकर के यमुना जी में फेंक ही दिया, और यमुना जी में फेंक करके फिर दोबारा सनातन गोस्वामी के पास आए, बोले आपने संत होकर के हमारे साथ धोखा किया। बोले भैया हमने क्या धोखा किया, जो हमारे पास था, जो तुमने जो मांगा हमने दे दिया। बोले भगवान शिव ने कहा था आपके पास सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, आपने सर्वश्रेष्ठ वस्तु हमको नहीं दी, आपने एक पत्थर का टुकड़ा हमें पकड़ा दिया, कोई तो धन आपके पास होगा, कोई तो निधि आपके पास होगी, कोई तो पदार्थ आपके पास होगा जिसके बल पर ये पारसमणि आपके लिए नगण्य थी, आप तो भूल भी गए थे कि ऐसा कोई पदार्थ आपके पास है, वो जो निधि है, वो जो धन है, वो जो संपत्ति है, वो मुझे दीजिए। बोले वो कहा गई पारसमणि, बोले वो तो फेंक दिया हमने जमुना जी ने। सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि हां, अब तुम उस निधि के अधिकारी बन सकते हो, जो पारसमणि फेंक सकता है वो इस संपत्ति का अधिकारी बन सकता है। ठीक यही बात मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य जी को भी बताई थी। जब याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि आ जाओ मैं तुम्हारी संपत्तियों का बंटवारा कर दूं, और जो पर्याप्त धन संपत्ति है तुम लोग बांट करके ले लो, अपना जीवन आराम से चला सकती हो, मैत्रेयी ने एक ही प्रश्न पूछा था कि आप जो संपत्ति दे रहे हैं क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी, अमृता हो जाऊं, किम तेनम अमृता श्याम। याज्ञवल्क्यों को जरूर, मैत्रेयी को जरूर लगा होगा कोई तो ऐसी निधि, कोई तो ऐसी धन, कोई तो ऐसी संपत्ति याज्ञवल्क्य जी के पास अवश्य ही होगी जिसके बल पर ये करोड़ों रुपए की संपत्ति छोड़ करके जा रहे हैं। इसलिए मैत्रेयी ने कहा यद भगवान वेद तदेव वत्, आप जिसको जान रहे हैं, आपके पास जो निधि है, आप मुझे उसी को प्रदान कीजिए, ये धन संपत्ति आप रखिए भले। और सब कथाओं का सार एक ही जगह जाकर के पूछता है, वो निधि, वो धन, वो संपत्ति, और कुछ नहीं, हमारी अपनी आत्मा है। और इस आत्मा के ऊपर ये दो पर्दे पड़े हुए हैं, एक विषयों की आसक्ति और एक कामादि का आवेग। जो साधक इन दो स्टेज पर काम कर गया, विषयों की आसक्ति से मुक्त हो गया और काम आदि के आवेग से मुक्त हो गया, उसके भीतर वो शाश्वत निधि, वो शाश्वत धन, वो शाश्वत संपत्ति प्रकट होती है, वो शाश्वत सुगंध पैदा होती है जिसकी खुशबू बहुत दूर तक इतिहास की सीमाओं को क्रॉस करके चली जाती है। हमारा अपना आत्म स्वरूप, हमारी अपनी आत्म सत्ता इतनी मूल्यवान, इतनी पवित्र, और अपनी निजी संपत्ति है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हम सब लोगों का क्या होगा यदि हम इस निजी और बहुमूल्य संपत्ति को छोड़ करके बाहर के ये कंकड़ पत्थर इकट्ठे यदि करते रहे। इस निधि के सामने सांसारिक उपलब्धियां, नाम, कीर्ति, यश क्या है? कंकड़ ही पत्थर है और क्या है? हमारे लिए हो सकता है बहुकीमती हो, बहुमूल्य हो, क्योंकि उसके लिए हम तो जान ही लड़ा देते हैं अपनी, परंतु शास्त्रवेताओं के लिए, शास्त्रज्ञों के लिए, आत्मज्ञों के लिए ये केवल कांस के टुकड़े हैं, ये केवल मिट्टी के ढेले हैं और कुछ नहीं है। उस आत्मसत्ता को, अपनी इस अमूल्य निधि को ज्ञात्वा अमृतम, उस अमृत तत्व को जिसने जाना, समनुभूय परात्म विद्या, पर आत्मविद्या के द्वारा जिसने अनुभव किया और आत्मविद्या रूपी इस नित्य सहसारिणी के साथ, फिर उनको किसी संसाधनों की जरूरत नहीं है, व्यक्तियों की जरूरत नहीं है, परिपूर्ण है। वन गृहे विचरन्ति धन्या, फिर एकांत में भी वो धन्य होकर के रह सकते हैं। हमारे लिए तो एकांत अभिशाप बन जाता है, हमें एक घंटा, दो घंटा, चार घंटा किसी कमरे में यदि बंद कर दे तो हमारे प्राण छूट जाएंगे, और उनके लिए तो एकांत आनंद का साम्राज्य होता है क्योंकि वो अपने आत्मसत्ता में डूबे होते हैं। वन गृहे विचरन्ति धन्या, भगवान करे, ईश्वर आशीर्वाद करे, गुरु कृपा करे, हमारे जीवन में भी वो पल आ जाए, वो क्षण आ जाए, हम अपने आत्मनिधि से संपन्न होकर के परानंद में डूब करके मस्ती से इस जीवन का आनंद ले पाए। इसी पावन प्रार्थना के साथ मैं आज की वाणी को यहीं समाप्त करता हूं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।